ओम शांति, ओम शांति। बाबा के अनमोल रत्न जो माला है रत्नों की, उसमें से जगमगाते बेशकीमती रत्न हमारे आदरणीय रामनाथ भाई जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं और अभिवादन करते हैं। बाबा ने आप में विशेषताएं बहुत भरी हैं। आप सदा प्रसन्नचित रहते हैं और आप स्पष्टवादी हैं। आपका जन्म महाराष्ट्र की धरनी में हुआ। बचपन से ही आध्यात्म की आपकी रुचि रही। आपने लौकिक पढ़ाई कंप्लीट करके डिग्री भी प्राप्त की और प्रबंधक के पद पर कुछ समय जॉब भी किया। साथ साथ ज्ञान और योग की लगन बढ़ती गई और आपके कदम माउंट आबू हेडक्वार्टर की ओर बढ़ते चले गए। 1978 से आप समर्पित होकर संपूर्ण रूप से ईश्वरीय सेवाएं देने लगे। टोली डिपार्टमेंट संभालने के साथ साथ ज्ञान की गहराई के चिंतन, योग की तपस्या कुछ दूसरा रूप लेने लगी और आपने भट्टियां कराना, ब्राह्मणों की क्लासेस कराना प्रारंभ किया। तत्पश्चात कॉन्फ्रेंसेस, संगोष्ठियों में भी आपकी अहम भूमिका रहती है। भारत के साथ साथ आपने न्यूजीलैंड, फिजी, यूके, अन्य देशों में भी आपका सेवाओं का योगदान रहा है। आप धार्मिक प्रभाग के माउंट आबू कोऑर्डिनेटर हैं और संत महात्माएं, जगत गुरुओं की सेवा के भी आप निमित्त हैं और बहुत प्यार से उनकी आप सेवाएं करते हैं। और आज हम आदरणीय भाई जी से सुनेंगे वर्तमान समय, सहन शक्ति और रियलाइजेशन की शक्ति की आवश्यकता, क्योंकि वर्तमान समय इन दोनों चीजों की कमी है और वो हमारे जीवन में कैसे आए वो आज भाई जी स्पष्ट करेंगे। आदरणीय रामनाथ भाई जी।
ओम शांति, ओम शांति। देखो, दो दिन पहले बाप दादा ने बहुत अच्छी एक बात बताई कि स्विच ऑन करो तो स्मृति आ जाएंगी कि मैं कौन, सर्वशक्तिवान शिव बाबा का मास्टर, सर्वशक्तिवान बच्चा हूं। ये स्विच ऑन होना चाहिए। इसी को गीता में भी कहा कि नष्ट मोहा स्मृति लब्धा कहा। अगर ये सभी प्रकार के मोह माया से अगर आप मुक्त होना चाहते हो तो स्मृति लब्धा। स्मृति माना याद। यहां भी बाबा ने स्विच ऑन कहा। कौन सा स्विच ऑन? स्मृति का। तो चलते फिरते हर कर्म करते अगर निरंतर अभ्यास, अपने आप होने वाला नहीं है, तब कहा अंतर्मुखी रहते हो, आपस में इधर उधर की बातें करते रहते हो, उसको बाह्यमुखी कहा। तो अंतर्मुखी है, जो काम मिला है अपने आप को आपने पढ़ाया है कि मैं कौन, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। अगर जितना भी समय ये स्मृति है तो हमारी स्थिति कैसी होंगी, शक्तिशाली होंगी कि बाप सर्वशक्तिवान है, उसकी सर्वशक्तियां खजाना बच्चों का अधिकार है, सिर्फ स्मृति की चावी है। अगर ये स्मृति है तो आज वर्तमान समय, परिस्थिति सारे विश्व के अंदर हर एक के लिए, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो, हर एक के सामने हर कदम परिस्थितियां है, समस्याएं है, पेपर है, विघ्न है, क्योंकि हरेक के अपनी अपनी चाल चलन है। और सृष्टि का अंतिम समय है। भूत आत्माओं के साथ सारे कल्प में हमारा लेन देन हुआ है, अनेक आत्माओं के संबंध संपर्क में आए हैं, कुछ लिया है, कुछ दिया है, कुछ हिसाब किताब है। वो सब कुछ इस छोटे से संगम युग पर चुकतू करना है। आज बाबा ने मुरली में कहा, अगर किसी बच्चों के अंदर जैसे संस्कार है, अगर शरीर छोड़ा वैसे यहां ही जन्म लेना पड़ेगा, कि संस्कार ऐसे है तो कहां जाएंगे। तो ये जन्म छोड़ा, शरीर छोड़ा, क्यों? अभी भी संस्कार है, कर्मातीत नहीं हुए हैं। अब आप पूछेंगे, हम कर्मातीत हुए या नहीं हुए कैसे पता चला? कैसे पता चला? मैं पुण्य आत्मा हूं, पाप आत्मा हूं? किसी डॉक्टर के पास जाओ और कहो मुझे कोई बीमारी नहीं है, वो तुरंत दिखाता आपको, शुगर कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है, दिखाता है। तब रियलाइज होता है, महसूस होता है। और कहा, जब तक महसूस नहीं हुआ तब तक परिवर्तन नहीं होता है, तब तक पुरुषार्थ के अंदर तीव्रता नहीं आती है। जो लगन चाहिए अटेंशन का, वो कब आएगा? जब महसूस होता है ये बीमारी है। तो यहां भी है, अगर रात को आप सोते हो, आंखें बंद करके सोते हो, ये स्वप्न कहां से आता है? तब कहा, मुखड़ा देख ले प्राणी, ये मुखड़ा तो आईने में दिखाई देगा, आत्मा का मुखड़ा कहां दिखाई देगा? मैं कौन सी आत्मा हूं? कहने से तो नहीं होगा कि मैं सर्वशक्तिवान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो देखना पड़ेगा। तो उसके लिए कहा, जब रात को आप सोते हो आंखें बंद करके, हर एक व्यक्ति को चार प्रकार के स्वप्न आते हैं, उसमें से दो प्रकार के स्वप्न चलेगा, और दो प्रकार के अगर स्वप्न आते हैं, काम और क्रोध के स्वप्न आते हैं, कहीं से नहीं आते, हमने ऐसे कर्म करके भरे हुए हैं, संचित कर्म कहा, वो स्वप्नों के रूप में दिखाई देता है, तब उसको कहेंगे पतित आत्मा, पाप आत्मा। तो अपने आप को पहले देखना पड़ता है, तब रियलाइज होता है मैं कौन सी आत्मा हूं, मेरे अंदर क्या है। नहीं तो ऐसे हम समझते, हम रोज क्लास कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जैसे हमारे अंदर शुगर की बीमारी है, कितने लोगों को पता भी नहीं है शुगर की बीमारी भी क्या होता है। जब किसी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने चेकिंग करके बताया, ब्लड रिपोर्ट देखा, तब जाके पता चलता है। तो यहां भी बाबा कहते हैं, मुखड़ा देख लो मैं कौन सी आत्मा हूं, क्योंकि एक गुलदस्ता है, राजधानी स्थापन हो रही है, हर एक प्रकार के आत्माएं चाहिए। तो मैं किस पोस्ट का हूं, किस पद के लिए तैयार हो रहा हूं, मेरा लक्ष्य क्या है, और क्या कर रहा हूं, और क्या करना चाहिए, तो वो मुखड़ा देखने से पता चलता है। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि अगर ये दो शक्तियां चाहिए, वर्तमान दो शक्तियों की जरूरत है, एक सहन करना पड़ता है, हर एक व्यक्ति जो भी कुछ बोलता है करता है वो सही समझ के करता है, वो गलत समझ के नहीं करता है, लेकिन उसके बोल, उसके कर्म, उसके व्यवहार हमारे लिए गलत लगता है, उसके लिए नहीं, वो कहता मैं सही कर रहा हूं। तो ये समझ दिया है बाबा ने, बच्चे बहुत जन्मों के हिसाब किताब चुकतू करना है, मिटाने के लिए आए हो, कर्म बंधन को बढ़ाने के लिए नहीं आए हो, ये स्थान मिटाने का है। नहीं तो शास्त्रों में सब जगह सबने कहा, चाहे लाख करो चतुराई, ये लेप मिटे ना रे भाई, इसको कोई मिटा नहीं सकता है। सिर्फ इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो सर्वशक्तिवान सत्यम शिवम सुंदरम शिव बाबा ने आकर कहा, संगम पर मेरा एक ही पार्ट है, पतित आत्मा को पावन बनाकर सत्युग के गेट तक छोड़ देता हूं, ये मेरा धर्म और कर्म है। सिर्फ संगम युग थोड़े से समय, अगर इस समय जो स्वयं ज्ञान का सागर शक्तियों का सागर, इन दोनों से अगर अपने आप को हमने परिवर्तन नहीं किया, फिर दोबारा चांस 5000 साल के बाद कल्प में एक ही दफा चांस मिलता है। अगर अभी नहीं किया तो हूबहू रिपीट। इसलिए ये समझ चाहिए कि मेरे साथ जो भी संबंध संपर्क में आते हैं, व्यवहार में, कर्म में, संबंधों में, शादी किया, बच्चे हैं, युगल है, मां बाप ऐसे है, ऐसे परिवार है, बिजनेस में नुकसान होता है, फायदा भी होता है, बहुत कुछ होता है, इन सब को समझना पड़ता है। तो ज्ञानवान बच्चा है वो समझता है, तभी ब्रह्मा कुमार इसके अंदर ही, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर ही बुद्धि का ज्ञान दिया है, नहीं तो सारी दुनिया के अंदर बुद्धि का ज्ञान नहीं है। मन लगाओ तो यहां बाबा ने कहा याद, याद बुद्धि को रहती है, मन को नहीं रहती है। सुना यहां से बाहर जाते एक मिनट के अंदर चला गया, पानी की लकीर। अगर जिसने ध्यान से जो सुनता है, जैसे देख लो एक बच्चा एक साल स्कूल में पढ़ता है, 5-6 सब्जेक्ट होते हैं, सब कुछ पढ़ता है, एक साल के बाद परीक्षा होती है तो एक प्रश्न पूछा जाए 10 पेज लिखता है। कैसे लिखता है वो, किताब देख के लिखता है? हम कहते हैं बहुत होशियार है, बुद्धिवान है, जब सुनता है पढ़ता है अंदर भर लेता है, बुद्धि सब कुछ ग्रहण करती है। बुद्धिमान का जो बुद्धि के अंदर भरा हुआ है, एक साल के बाद प्रश्न पूछा जाए 10 पेज लिखता है, तब का पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे राजा। लेकिन आज इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में वर्तमान हमारे अंदर एक आदत बनी, आधा कल्प से सुनना है लिखना नहीं। आपने मैं भी अगर नहीं लिखूं हमें भी याद नहीं रहेगा। कोई भी आत्मा, जिसकी भी किसी की भी आत्मा के अंदर बुद्धि इतनी दिव्य नहीं है, तब कहा शिव बाबा आया है दिव्य बुद्धि दाता का। बुद्धि को स्वच्छ करने का एक ही तरीका है, जो रोज ये ज्ञान रतन, आज बाबा ने कहा यह समुद्र के अंदर नहीं मिलता है, ये स्वयं निराकार सर्वशक्तिवान शिव बाबा आकर ये ज्ञान रतन देता है, वैल्यूबल है। एक ही रतन बस रोज मुरली से एक शब्द लिखना जरूरी है, सुनने से किसी को याद नहीं रहता है, किसी की बुद्धि इतनी दिव्य नहीं है, स्वच्छ नहीं है। कोई भी एक शब्द ले लो जो आपको अच्छा लगा, सारी मुरलियों से लिख के रखो, सवेरे दिन में शाम को 2-3 दफा अपने आप को पढ़ाओ, क्योंकि औरों को पढ़ाना सबसे सहज काम है और सबसे कठिन स्वयं को पढ़ाना। अभी भी आप देख लो शाम को पूछना एक घंटे के बाद, क्या सुना था? बहुत अच्छा था, क्या था बताओ। सुनकर अगर बच्चा स्कूल में जाता है, अगर पास नहीं होता है, लिख नहीं सकता है, तो स्कूल में जाके क्या किया? खेलने गया, घूमने गया। तो आज हमारा भी लक्ष्य यही हुआ, ये विद्यालय है, लिखेंगे पढ़ेंगे बनेंगे राजा। अपने आप नहीं, सिर्फ सुनने से नहीं, लेकिन ये भक्ति मार्ग के अंदर संस्कार हुआ है, सुनना है। तो इसके लिए एक शब्द अगर आप लिख के रखते हो, अपने आप को सवेरे से रात तक पढ़ाते रहते हो, याद दिलाते रहते हो, और संबंध संपर्क में जो भी आते हैं उनको भी सुनाते हो, संस्कार बनता है। ये संस्कार सारे कल्प हमारे साथ रहेगा, जैसे संस्कार वैसे संसार। संस्कार के अंदर क्या है? ज्ञान अगर है, ज्ञानी परिवार, दैवी परिवार, दैवी कुल, क्योंकि दैवी संस्कार भरे हुए हैं। तो ज्ञान के संस्कार अपने आप नहीं होता, सुनने से नहीं होता है, और बहुत कुछ भी नहीं चाहिए, एक बूंद रोज, और वो भी सदा नहीं, एक महीने तक करना चाहिए नहीं, कम से कम 10-15 दिन आदत डालने पड़ती है। फिर सुनते सुनते बुद्धि अपने आप ग्रहण करती है, आज ये पॉइंट बाबा ने बहुत अच्छे सुनाया, ये मुझे करना है। सुनते सुनते ही 10-15 दिन आदत डालने पड़ती है। ये अगर आप काम करते हो, इसके अंदर बहुत सारी प्राप्तियां है। जैसे बाबा ने कहा, सहन करना, सामने वाला कोई गुस्सा करता है, अन्याय करता है, बहुत कुछ करता है, लेकिन बुद्धि के अंदर ज्ञान गया, बुद्धि निर्णय देती है, गुस्सा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, ब्रेक किसके पास है, कंट्रोलिंग पावर कहां है? बुद्धि के पास है। वो बुद्धि आपको रोकती है, क्योंकि बुद्धि को याद है, मुझे कर्म बंधन मिटाने के लिए आया हूं मैं, कर्म बंधन बनाने के लिए नहीं, अब मुझे सब कुछ सहन करना है, अभी हार माननी है, सारे कल्प हार पहनाएंगे। सारे कल्प अगर शांति चाहते हो, सुख चाहते हो, थोड़े समय के लिए सहन करना पड़ता है, बहुत अन्याय होता है, अपने आप नहीं होता है, अपने आप कोई गुस्सा नहीं करता है, ये मेरा ही किसी जन्मों का हिसाब किताब था, हम आए यहां चुप तो करने आए हैं। ये अगर बुद्धि के अंदर अपने आप नहीं होता है, आज मुरली सुनी, बच्चे सहन करो, आप बार बार पढ़ाते हो, नहीं तो हमारी बुद्धि के अंदर सॉफ्टवेयर है ये, इसके अंदर ये प्रोग्राम भरा हुआ है, इन्होंने ऐसे कहा तो ऐसे करना है, ऐसे बोलना है, यह आधा कल्प से भरा हुआ है। अब भी सुनने के बाद अपने आप को पढ़ाओ, अगर इन्होंने मुझे गुस्सा किया, इन्होंने अन्याय किया, मेरे साथ रहते हुए मुझे ठगी किया, कोई चोरी करके लेके गया, बहुत कुछ होगा, वो सब पढ़ाओ, इन सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, अपने आप से बात करो, अपने को तैयार करो। तो मुझे शिव बाबा ने क्या कहा, बच्चे तुम सहन करो। नहीं बाबा वो ऐसा करता रहे और हम सहन करें, हां बच्चे वो मेरा बच्चा है, मैं देख लूंगा, आप मेरी श्रीमत पर चलो, मेरी जिम्मेवारी है। तो बाबा ने गारंटी दिया है। तो ये किसको याद है, सुना है हमने मुरली चली गई, लिख के रख करके सवेरे से रात तक बार बार पढ़ाया है, तब का स्मृति लब्धा, परिस्थिति आती है तुरंत बुद्धि कहती है नहीं ये नहीं खाना, ये नहीं देखना। बाबा ने कहा अपवित्र व्यक्ति का हाथ का भी नहीं खाना है, इतना भी कहा। रात को जब आप सोते हो बुरे स्वप्न आना, ये भी महापाप है। कहते आप में से कोई जानते हो स्वप्न को कोई रोक सकता है, किसी को पूछ के स्वप्न आता है, ये भी महापाप को कौन रोकेगा? जिस बुद्धि के अंदर ज्ञान गया, रात को सो गया, बुद्धि कभी सोती नहीं है, जागती ज्योत है, मन सोता है। अगर बुरे अंदर संस्कार है, स्वप्न आएगा तुरंत बुद्धि आपको उठाएंगी, जग गए स्वप्न खत्म। अगर बुद्धि के अंदर ज्ञान नहीं, मन बुद्धि दोनों सोए हैं, आधा घंटा स्वप्न चलेगा, महापाप होगा। स्वप्न को भी रोक सकते हो, सिर्फ एक ही काम, रोज का एक बूंद धारण करो। कहते धारण अपने आप नहीं होता है, आपको मैं याद रखना चाहता हूं, नहीं होगा, आपने हम भी देखते हैं नहीं याद रहता है, लिखना जरूरी है। और सवेरे से शाम तक कम से कम 3-4 दफा औरों को सुनाना जरूरी है, अपने आप को पढ़ाना जरूरी है। क्यों? बुद्धि इतनी तमो प्रधान हो गया है। वही नेगेटिव चीज देखो आप, गलत चीज एक दफा देख लिया, सारा दिन ने स्वप्नों में भी नहीं, एक महीने तक भी याद रहेगा। ये निशानी है कि बुद्धि इतनी तमो प्रधान है। तो इसको दिव्य बनाने के लिए बाबा आया है, तो विधि बताता है। तो अगर इस प्रकार हम एक एक बूंद रोज इकट्ठा करते हो, देखो 30 दिन में 30 मुरली के पॉइंट ये रतन जमा करते हो, तब कहा बाबा ने ये खजाना है। जो बाप का खजाना है वो बच्चों का खजाना है, बच्चों का अधिकार है उसके ऊपर। अगर ऐसा जमा किया, बहुत सारी परिस्थिति आती है, एक दो नहीं। अगर आपको वर्णन कर, जैसी दुनिया में डॉक्टर्स वर्णन करते हैं कितने प्रकार की बीमारियां हैं, अलग अलग नाम है, यहां भी समस्याएं अनेक अनेक प्रकार के हैं। इन सब का निवारण, इन सब के ऊपर कंट्रोल करना, उसको सहन करना, होने दो, बोलने दो, कुछ भी होने दो, थोड़े दिन का है। कल हमारा राज आएगा और बाबा बैठा है, बाबा देखता है। बच्चे मैंने आपको कहा तुम चुप रहो, मैं देख लूंगा, वो मेरा बच्चा है, ये गारंटी दिया बाबा ने। जिसको पूरा विश्वास है तो मुरली पर ध्यान देता है। तब बाबा ने कहा मेरे सुपूत बच्चे कौन, कौन सुपूत, मेरे श्रीमत पर चलते हैं, सेवा भी बहुत करते हैं दिन रात। किसके लिए? मैंने किया, मेरा नाम, मैं कर रहा हूं। तब बाबा ने कल कहा जो बाप पढ़ाता है वही औरों को पढ़ाते हो, तब जमा होता है, तब कहेंगे ये शिव बाबा के श्रीमत के अनुसार सेवा। नहीं तो दुनिया में सेवा भी तो बहुत लोग करते हैं, जमा नहीं होता है। संसार में रहो, ग्रस्त में रहो, श्रीमत के अनुसार। सबसे पहले एक श्रीमत, मुरली का एक शब्द, दो भी नहीं चाहिए, और वो भी आपकी इच्छा के अनुसार। ये वरदान ही लेना चाहिए, स्लोगन ही लेना चाहिए, नहीं, आपको जो योग्य लगता है। हर एक अपने स्वभाव संस्कार को जानता है, हर एक अपने आप को परिवर्तन करना जानता है, उस प्रकार के मुरली के पॉइंट ले लो और बार बार पढ़ाओ, संस्कार बन गया, सिखाओ इस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। अगर किसी ने ऐसा किया, कोई लूट के चला गया, किसी ने पैसा लिया दिया नहीं है, अन्याय किया, कोई चोरी करके गया, किसी ने बदनामी किया, सब कुछ होगा, घर में लड़ाई झगड़ा होगा, भाई अपना हिस्सा नहीं देगा, क्या करना चाहिए? अपने आप को पढ़ाओ, तैयार करो। जैसे परीक्षा होती है तो बच्चा अपने आप को तैयार करता है पढ़ लिख कर, तो ये भी पढ़ाई है, सिर्फ यहां भावना नहीं है। नहीं तो हमने महाभारत, रामायण, गीता क्या नहीं पढ़ी है, सब कुछ पढ़ा है, लेकिन कोई भी शब्द आचरण में नहीं आया। तब कहा भक्ति मार्ग में हम कहां पहुंच गए, ऊपर चढ़े कि नीचे आए? अपने आप से पूछो, किसको पता नहीं। रामायण महाभारत, क्रोध नहीं करना चाहिए। एक बार तो बाबा ने इतना भी कहा, किसी को बोलो किताब लिखो क्रोध के ऊपर, बहुत बड़ा किताब लिख देंगे। किसी को समझाओ, समझाएंगे क्रोध करने से क्या क्या होता है, लेकिन अपने मुखड़ा देख लो, मेरे अंदर वो आया, मेरे जीवन में आया। तब बाबा ने कहा स्वरूप बनो, स्व का रूप हो, धारणा तब होती है, स्वरूप अपने आप नहीं बनेगा। जैसे आप जानते हो दही के अंदर मक्खन है लेकिन दिखाई नहीं देता है, लेकिन दो हाथ चाहिए, दो हाथ से अगर मसलते हो, आधा घंटा, दो मिनट नहीं, आधा घंटा दोनों हाथ से मसलते हो, तब मक्खन आता है, वो शक्ति है, मक्खन के अंदर शक्ति है। तो यहां भी ज्ञान सुन लिया हमने, लिख करके रख दिया डायरी में, तो उससे ब्राह्मण जीवन में वो निखार नहीं आता है, वो शक्ति नहीं आती साधना करने के लिए, सहन करने के लिए। बहुत सारी परिस्थिति आती है, सब कुछ समाना पड़ता है। तब का मीरा को विष दिया तो क्या हुआ? आज किसका गायन है? उसका पति का गायन नहीं है, जिसने दिया था उसका गायन नहीं है, जिसने पिया। तो ऐसे गायन और पूजन योग्य बनना चाहते हो, सब परिस्थिति आती है। विष पीने जैसा परिस्थिति आती है, लेकिन किसके नाम पर, किसके लिए करते हैं? बाबा ने कहा मेरी दाढ़ी के लाज रखो, ब्राह्मण कुल के लाज रखो। ब्रह्मा बाबा ने इतना त्याग किसके लिए किया, किसके लिए गालियां खाई? ये सब कहां रहता है? मुरली से आता है, एक एक शब्द लिया, बुद्धि में है, परिस्थिति आती है तुरंत बुद्धि कंट्रोल करती है। एक पता होना चाहिए सारे शरीर को कौन चलाता है। आप सोए हो, मच्छर काटता है, कौन हाथ उठा के मारता है? नींद में भी बुद्धि कभी सोती नहीं। तब आज बाबा ने कहा ज्ञान और योग, तो इस दीपक को घृत डालते रहो, अंत तक बुझ ना जाए, नहीं तो मरने के बाद हम दीपक जला के रखते हैं, गया दीपक जला के फायदा क्या है? वो बुझना नहीं चाहिए, तेल डालते रहते हैं। ये आज ये ज्ञान और योग से ये घृत अंत तक डालते रहो। और कैसे? सिर्फ सुनने से नहीं, एक ही शब्द ले लो बस, रोज लिखना जरूरी है, क्योंकि हमारी बुद्धि किसी की इतनी स्वच्छ नहीं है, ज्ञान धारण ही नहीं होता, याद ही नहीं रहता है। अपने आप परीक्षा ले लो, सवेरे सुना, लिखा भी आपने, रात को सोते समय पूछो अपने आप से, आज बाबा ने क्या कहा था, पूछ लो, मैंने किया ये, मैंने आचरण में लाया, पूछ लो। अगर आपकी बुद्धि कहती है, दिल कहता है, वो सत्य बोलता है, तब का सच्चे दिल पर साहेब राजी है, बाप राजी होता है। हाँ, बच्चे को मैंने जो काम दिया, होमवर्क दिया, बच्चे ने किया। बाबा ने कहा रात को चार्ट बताओ, अपने आप से देख लो, पहले अपने दिल को स्वपसंद, जो स्वयं को मैंने आज किया, तब आपको लगा। तो बाबा ने सवेरे कहा रात तक मुझे याद है, बुद्धि को है, वो अपने आप कर्मों में लाएगा, देखने में, बोलने में, खाने में, हर कर्म में बुद्धि कर्म करती है। जिसकी बुद्धि नहीं उसको मैड कहते हैं, जो सोचता वो करता है। तब कहा सोच समझ कर्मों की गुई गति है। सोचा विचार आने के बाद बाबा ने कहा बाप से वेरीफाई करो, ब्रह्मा बाबा ने ऐसे किया, श्रीमत ऐसा है, तो ये करने के लिए बुद्धि के अंदर अपने आप जाता है, तो अपने आप वेरीफाई करता है। तो बुद्धि स्वप्नों में भी आपको गलत कर्म करना नहीं देंगी। दिन में छोड़ दो, दिन में तो है ही है, तुरंत खाएगा। उसको आप कहते हैं कि दिल खाता है, अमृत वेले आज उठे नहीं आप किसी कारण, सारा दिन दिल खाता है। दिल माने ये दिल नहीं, बुद्धि के अंदर बार बार याद आता, अरे आज अमृत वेला नहीं किया, बाबा क्या कहेगा? बाबा के कमरे में तो सिर नीचे होता है, जो श्रीमत का उल्लंघन किया है, आज मुरली नहीं सुनी, कारण बहुत है, किसी कारण से अपने आप खाता है। बुद्धि रियलाइज करती, महसूस करती है, मैंने आज श्रीमत का उल्लंघन किया। जो रोज करते थे वफादार है, ईमानदार भी है, लेकिन कहीं जाकर किसी कारण से अगर आप मिस करते हो तो रियलाइज होता है, वो बुद्धि को होता है। और जिस बुद्धि में ज्ञान रोज भरते हो, वो बुद्धि रियलाइज करता, महसूस करती है, मैंने ये गलत किया, ये नहीं करना चाहिए, ये गलत देखा, ये गलत खाया, किसी ने दिया बहुत प्यार से दिया, नहीं ये नहीं खाना चाहता, तब का दृष्टि दे के खाओ। इतना भी नहीं, अभी भी और भी इसके अंदर इतना चीज है, परखने की शक्ति कहां मिलती है, किसका कैसे परखेंगे। अगर आपके सामने कोई आया सेंटर में कोर्स करने के लिए, कोई आता है, किस लक्ष्य से आया वो, हर एक का अपना अपना लक्ष्य है, तो हम कैसे परखेंगे। सहज तरीका है, तरीके आज वर्तमान हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो भी आप बाबा ने इतनी सहज तरीका बताया। बच्चे कोई भी सामने आता है, एक सेकंड दृष्टि दे दो, ये दृष्टि नहीं चमड़ी के आंखों से देखना नहीं, बुद्धि के अंदर स्मृति चाहिए, स्मृति युक्त दृष्टि। सिर्फ मैंने आंखों से देखा ये चमड़ी के ग्लास है, बुद्धि के अंदर स्मृति चाहिए, मैं कौन, मैं सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का बच्चा हूं। ये बुद्धि में याद रखते हुए अगर सामने वाला कोई भी आया देखते हो और तुरंत तो दृष्टि नीचे इधर उधर कर पाए, तब समझना दाल में कुछ काला है। अगर आपको स्मृति है और एक सेकंड देखते हो दृष्टि से दृष्टि मिलाता है, तब समझना इनका दिल साफ है, आराम से संबंध संपर्क में आओ। दृष्टि देने की परखने की आज शक्ति कहां से मिलेंगी, सहज तरीका है। बाबा ने दृष्टि दे दो, कुछ ने खाना भी दिया, हम दृष्टि मीन्स इन आंखों से चमड़ी के ग्लास है, बुद्धि नेत्र है, वो दृष्टि है, उसके अंदर स्मृति है। तो स्मृति में रखते हुए अगर आप किसी को भी देखते हो, कोई कैसा भी हो, दृष्टि देते ही वो तुरंत नीचे करता है, इधर उधर देखता है, तब समझना दिल में कुछ काला है। सोच समझ के संबंध संपर्क में आओ, परखने की शक्ति कहां मिलेगी, ये बुद्धि के अंदर, ये ज्ञान से आती है। रियलाइजेशन शक्ति ये बुद्धि के पावर से, सभी महसूस करने की शक्ति, किसी को देखते ये कौन, ये क्या है, ये कैसा है, हर एक का अपना अपना लक्ष्य है, उसको परिवर्तन करना बाद में, पहले अपने को बचाना है। तब का स्व परिवर्तन, पहला स्वयं को प्रोटेक्ट करो, पहले उनको परिवर्तन करने नहीं जाओ। तो अपने को अगर समझते हो, फिर मेरा व्यवहार बोल कर्म आचरण उनके संबंध संपर्क में कितना आना चाहिए, कहां तक आना चाहिए, ये सब निर्णय करता है बुद्धि। तब बाबा ने कहा मैं आया हूं तीसरा नेत्र, बुद्धि नेत्र देने के लिए, दिव्य नेत्र देने के लिए। नहीं तो गीता में देखो अर्जुन के सामने श्री कृष्ण खड़ा था, सारी दुनिया सबको भगवान कहती है, तो भी कहा आप मुझे देख नहीं सकते हो, मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूं। अर्जुन अंधा तो नहीं था, देख रहा था, वो दिव्य दृष्टि चाहिए, वो बुद्धि नेत्र। इस ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर शुभ बाबा आके हर एक बच्चों को नेत्र, उस नेत्र को, उस दृष्टि को, उस बुद्धि को दिव्य बनाने की विधि बताता है। अगर ये बुद्धि हमारी दिव्य है, अपने आप हमारे अंदर जो सहन करना चाहिए, कहीं बातें सुनते हैं देखते हैं समाना चाहिए, अपने आप नहीं, सब कहते चुप रहो, अपने आप नहीं होगा, दबाना नहीं है। तो सहन करने के, अगर सहन कर लिया डर कर, वो हार्ट अटैक होगा, खुशी से समझ से सहन किया, लेट गो, पता है ये उसका अपना पार्ट है, ये उसका अपना कर्म है। मुझे क्या, अगर कुछ देखा सुना, बाबा के कमरे में बैठो, बाबा ने कहा अपने दिल में रखना नहीं, बाबा के सामने उल्टी करो और किसी को नहीं सुनाना। बाबा आया है बच्चों का दिल का दर्द लेने के लिए, तो दिलाराम को सुनाओ, अपने पास भी नहीं रखना, बाबा ये ऐसा करता है, इसके ऐसा व्यवहार, दूसरों को सुनाने से कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो सहन करने की विधि चाहिए भी। तीसरा उसके साथ सहन करने का आया, हाँ कोई गुस्सा करता है, अन्याय करता है, बहुत कुछ करता है, उस समय शुभ भावना कहते हैं हम, वो गलत बोल रहा है, आपके बुद्धि के अंदर पता है ये शुभ बाबा का बच्चा है, शुभ बाबा ये आपका बच्चा है, इस बच्चे को सद्बुद्धि दे दो, इसका कल्याण करो, इसको पता नहीं मैं क्या कर रहा हूं, किसको बोल रहा हूं। उस समय आपको बाबा दिखाई देता है, सामने वाला व्यक्ति नहीं दिखाई देता है, उसके बोल अंदर नहीं जाता है, इसको कहा सुनते हुए भी उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ये अपने आप नहीं होगा, सुनने से नहीं होगा, इसके लिए पहले पूर्व तैयारी चाहिए। अपने आप को बैठ के पढ़ाओ, अगर कल मेरे सामने ऐसी परिस्थिति हो, अपना मित्र नजदीक वाला व्यक्ति अपने को ठग करके चला जाए, कुछ ऐसा करता है, तो मुझे क्या करना चाहिए। कहते हैं परिवार में संबंधों में ऐसा होता है, परिस्थिति आती है, मां बाप के अंदर, बच्चों के अंदर, युगलों के अंदर, क्योंकि हम सभी गृहस्थी है, सन्यासी नहीं है, परिवार वाले हैं। आप कहते हो मेरी युगल मेरी प्रियतमा है, मैं जो कहता हूं करती है, लेकिन एक दिन अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है, उसके लिए पहले से सोचो, पहले से तैयार करो, अगर इस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। तो बाबा इन एडवांस बच्चों को पढ़ा लिखा कर तैयार करता है, क्यों, परिस्थिति आएंगी सामना करने के लिए। युद्ध के मैदान में ऐसे अस्त्र दे के नहीं भेजते हैं, पहले तैयार करते हैं, पढ़ाते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, ऐसी ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए। ये मुरली, ये पढ़ाई हमें तैयार करती है, एक कुरुक्षेत्र है, इस कुरुक्षेत्र के अंदर हर प्रकार की परिस्थिति होंगी। रोना नहीं, मेरे जीवन में ऐसा हुआ, इसने ऐसा किया, आज किसी से मिलो, अपनी बीमारी, अपने दर्द, अपना दुख ही वर्णन करते हैं, लेकिन बाबा आया जिसके पास ये बुद्धि में ज्ञान है, अगर आप किसी से मिलो, सच्चा मित्र वो है, किसी से मिलो, आज आप अपने आप को देखना, सवेरे से आज रात तक शाम तक किसी ने आज आपको मुरली के पॉइंट सुनाया, पूछ लो, मिले बहुत, बात बहुत किया, लेकिन किसी के मुख से ज्ञान के पॉइंट नहीं आएगा, तब का मुरलीधर। इसलिए भारत में पृथ्वी पर श्री कृष्ण बैठा है, कैसे मुरली लेके बैठा है, प्रसन्न होता है, देख करके सब खुश हो जाते हैं, कैसे, जिसके बुद्धि में मुरली है। आप अपने आप से पूछो, अगर हमने पढ़ने के लिए इधर आए, हाँ जो बच्चे स्कूल में जाते हैं पढ़ना नहीं, खेलने के लिए जाते हैं, खेल सारा दिन खेलते रहते हैं, घूमने जाते हैं, हम पढ़ने के लिए आए, तब का ब्राह्मण वो है जिसके बुद्धि में रोज आज का मुरली के पॉइंट, अपने आप को तब समझना मैं ब्राह्मण हूं, आज के मुरली के पॉइंट रात तक, जब जब रात को सोने जाते हो खटिया पर पूछ लो, आज मुझे बाबा ने क्या कहा। अगर बुद्धि तुरंत जवाब देती तब सुना कि मैं बाप के दिल पसंद हूं, बाप मुझे पसंद करेगा, मेरी हर इच्छा हर संकल्प बाबा को पहुंचता है, उसको बाबा ने कहा सुपूत बच्चा है जो मेरे श्रीमत पर चलता है। लौकिक में भी ऐसे, अगर मां बाप बच्चों को कुछ कहते हैं, बच्चा तुरंत करता है, तो मां बाप खुश होते हैं, उनकी भी हर इच्छा मां बाप पूरी करते हैं, ये सुपूत बच्चा है, छुपा करके उनको खिलाएंगे भी, ये बहुत अच्छा, कभी भी ना नहीं करता है। तो यहां भी लौकिक में भी है, अलौकिक में भी है। तो संसार में रहते हुए बहुत कुछ करो नहीं, बाबा साधारण सहज 24 घंटा कर्म करो, संसार में जैसे रहते हो वैसे चलो, लेकिन एक एडिशन करो कि एक बूंद के प्यासे कहा, भगवान के एक बूंद के प्यासे, दो भी नहीं चाहिए, रोज मुझे एक बूंद लिखना चाहिए, लिख के अपने पास रखना चाहिए, अपने आप से पूछो ये कर सकते हो, करना चाहते हो, क्योंकि मधुबन एक महान तीर्थ है। ये कहां आए हो आप, किसके लिए आए थे इधर, बाबा से मिलने के लिए आए हैं। तो बाबा मिलन में आए हो, बाबा ने मुझे क्या पढ़ाया, कल अगर जाते समय क्या कहेंगे, कहां गए थे आप, बाबा ने क्या सिखाया, बच्चा स्कूल में जाता है, जब पढ़ने के बाद आके घर में मां बाप को बताते आज ये पढ़ाया, तो हमारे बुद्धि के अंदर अगर कोई मिले बाबा ने क्या कहा मुरली में, क्या होमवर्क दिया, बाबा मिलन में आए क्या किया। जगदीश भाई बोलते थे आया खाना खाए घूमे गए नहीं, जाते समय कुछ हाथ भर के ले जाओ, खाली हाथ नहीं, हाथ ये हाथ नहीं, बुद्धि, बुद्धि के अंदर कुछ हो। मुझे सारा जब तक दोबारा आते हो तब तक होमवर्क लेके जाओ कि मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं और मुझे सहन करना है। कोई कुछ उल्टा सुलटा बोलता है, कुछ होता है, ये मेरे हिसाब किताब है, नहीं तो कोई हमारे संबंध में ऐसा नहीं आता है। अब ये भाई बहुत अच्छा है, सब लोग कहते हैं इसकी महिमा करते हैं, लेकिन ये रोज मुझे गुस्सा करता है, इनके साथ इसका कोई हिसाब किताब नहीं, मेरे साथ है, मेरे साथ ऐसे व्यवहार करता है, तो मेरा कोई हिसाब किताब, ये समझना, वो समझ कर निर्णय ले लो। कौन करेगा, जिसके बुद्धि के अंदर ज्ञान है वो निर्णय करता है, जिस बुद्धि को जंक लगा, जिसके अंदर ज्ञान नहीं है वो निर्णय नहीं कर सकता है, क्योंकि बुद्धि दिव्य नहीं हुई है, उसके अंदर वो विचार नहीं आता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सिर्फ यही सोचता रहेगा, यही बोलता रहेगा कि इन्होंने मुझे ऐसा किया, इन्होंने मुझे ऐसा कहा, इन्होंने ऐसा कहा, और सारी बीमारियों का कारण जैसे सोचेंगे वैसे बनेंगे। हमारे ऐसी व्यवस्था है, विचार जब आता है शरीर के अंदर ऐसा एक लिक्विड तैयार होता है, खाने को हजम करता है, उसको कहते हैं खुशी खुराक है। अगर गलत विचार चल रहा है, किसने बहुत दुख दिया, किसने बहुत कुछ किया, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके जीवन में किसी ने किसी प्रकार का दुख नहीं दिया हो, समस्या नहीं हो, इसलिए का घोर कलयुग है ये। अगर जो कभी भी बैठो, योग में बैठो, खाने में बैठो, संसार में चलो, गाड़ी में बैठो, वही चलेगा। तो खाना जो खाया वो जला एसिड तैयार करता है, क्योंकि बीमारी का कारण, इतनी बीमारी अलग अलग नाम है, विचार शुद्धि, विचार अपने आप नहीं होगा। आज अगर आपको मैं कहूं कि आप मनन चिंतन करो ज्ञान का, संभव नहीं है, कोई खाली नहीं है, आज एक मिनट खाली मिला तो मोबाइल देखेंगे, कुछ भेजना है कुछ मिटाना है, एक मिनट भी मिला तो रास्ते पर चलते हुए भी, समय नहीं है, रास्ते पर चलते हुए भी मोबाइल को, जैसे बहुत बड़े ऑफिसर है, बहुत बड़ी सेवा है, ऐसी परिस्थिति में ज्ञान कहां ठहरेगा। आपको नहीं कहता, मैं अपने आप को भी कहता हूं ज्ञान नहीं चलता है, लेकिन एक काम कर सकते हैं कि मुरली का एक पॉइंट है, आदत डालो, कोई मिला, किसी का फोन आया, बात करो जरूर, ऐसे नहीं आप बात नहीं करो, बिजनेस की बात करो, संसार की बात करो, लेकिन आपके पास अगर ज्ञान का पॉइंट है, लिख के रखा हुआ है, पढ़ के बताओ, तो इससे भी क्या होगा, जो उन्होंने अपना दुख पर चिंतन कुछ बताया उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं रहेगा। ये ज्ञान साबुन का काम करता, उसको धो देता है, ये नेगेटिव का प्रभाव पड़ता है, लेकिन ज्ञान पॉजिटिव है। कर्म करते हुए कपड़े पर दाग लगता है, नहीं लगना चाहिए ऐसा नहीं, संभव नहीं है, लगेगा, लेकिन साबुन है, तुरंत धो लो। अगर किसी ने समाचार इधर उधर का सुनाया, अगर आपने उसके बाद सुनकर उसको आज बाबा ने ये कहा था, वो नेगेटिव का प्रभाव अपने आप साफ कर देगा तुरंत। लेकिन ज्ञान सदा बुद्धि में याद नहीं रहेगा, इतने हम प्रवीण नहीं है, इतने हुशार नहीं है, इतने बुद्धिमान नहीं, लिख के रखो। जैसे किसी को फोन करना चाहे मोबाइल नंबर लिख के रखते हो, तो ऐसे ये भी जरूरी है। अगर ये काम करते हो तो देखना मन शांत, शांति और अशांति क्या है, शांत माना जिसके मन में बुद्धि में ज्ञान का मंथन चलता है, चिंतन चलता है, किस किसी को हम देखते ही तुरंत मुरली याद आती है, तब शब्द समझना मेरा आत्म अभिमानी हूं, मैं आत्मा हूं, बिंदु हूं, ये नहीं याद रहता है, आत्मा पॉजिटिव है, किसी को देखते शुभ विचार आ रहा है, ये आत्म अभिमानी की निशानी है। किसी को देखते ही व्यक्ति वैभव मान शान आकर्षण इच्छा नेगेटिव आता है तो मैं देह अभिमान में हूं, आत्म में मैं आत्मा हूं, बिंदु हूं, चमकता हुआ बिंदु दिखाई नहीं देता है। पॉजिटिव अवेयरनेस कहा। अगर आपको किसी को देखते विचार आया, चेकिंग करके देखना, इनको देखते विचार आया कि मुझे आज इनको मुरली के पॉइंट सुनाना चाहिए, तब समझना मैं आत्म अभिमानी हूं। आत्मिक स्मृति है तो पॉजिटिव विचार आता है। अगर वो नहीं है और कुछ बात आती है तो समझना मैं देह का भान है, इसको ये सुनाना चाहिए, इन्होंने बहुत अच्छा जैकेट पहना, इन्होंने बहुत अच्छा बैच पहना, कुछ आकर्षण कोई इच्छा, ये किसको होती है? शरीर को। तो संसार में चलते हुए कैसे चलना चाहिए तो अपने अंदर ये प्रोग्राम देना पड़ता है। बुद्धि ऐसी अच्छी बात ग्रहण नहीं करती आज के जीवन में, आज के जमाने गलत चीजें गलत बातें अच्छी याद रहती है, और जब तक 10-15 लोगों को नहीं सुनाया तब तक नींद भी नहीं आती है। और ऐसे व्यक्ति अगर है, आप बताओ योग में बैठे योग लगेगा? बहुत जन्मों के विकर्म है, विनाश होंगे, कहते योग नहीं लगता। और बाबा ने कहा बाप को याद करना इतना सहज है, किसको? जिसकी बुद्धि स्वच्छ है, जिसका मन बुद्धि स्वच्छ है। जैसे कोरोना के समय देख लो कितनी बीमारी, कितने लोग मर गए, तो गवर्नमेंट ने डॉक्टर ने प्रबंध किया था, बताया था बार बार हाथ धो लो, बार बार सैनिटाइज करो, क्यों? कुछ लगा ही नहीं है। जिसने ये किया, मास्क पहना, अपने आप को मुंह अपने को बचाया, हाथ को भी साफ रखा, तो बच गए हैं। तो कुछ हर चीज का प्रबंध है। यहां भी बाबा को याद करने के लिए भी दो हाथ चाहिए, मन और बुद्धि, या आत्मा के दो हाथ है। अगर ये दोनों स्वच्छ है, जितनी लंबी यात्रा करना चाहते हो, जितना समय सूक्ष्मतन परमधाम में रहना चाहते हो, रह सकते हो। कौन? जिसका मन और बुद्धि स्वच्छ है। कैसे होगा? बार बार सैनिटाइज करते हो, बार बार हाथ धोते हो, बार बार मन के अंदर, बुद्धि के अंदर अपने आप को याद दिलाते हो, आज बाबा ने क्या कहा, आज बाबा ने क्या कहा, कोई मिला उसको सुनाते रहते हो सवेरे से रात तक, तो मन और बुद्धि स्वच्छ है। लेकिन ये सुनने के लिए जितना सहज है उतना ही कठिन है ये, क्योंकि आज की दुनिया में किसी को ज्ञान की बात बताओ कोई नजदीक नहीं आएगा, है ना? नजदीक कौन आएगा? इधर उधर की चटपटी बातें सुनाओ, चारों तरफ आपके घेरे रहेंगे। अगर ज्ञान की बात तो कोई नजदीक नहीं आएगा, लेकिन एक व्यक्ति नजदीक आएगा आपका। कौन आएगा? कौन आएगा? हाँ, बाबा नजदीक आएगा। जिसकी बुद्धि स्वच्छ है, जिसके अंदर ज्ञान है, भगवान जिनके साथ है, जिनके साथ बहुत लोग है, उनके नजदीक भगवान नहीं आ सकता है, है ना? जिनके बहुत लोगों सपोर्ट है, बहुत लोग साथ है, भगवान नजदीक नहीं आ सकता है। भगवान किसके नजदीक आएगा? जिनकी मन और बुद्धि स्वच्छ है, कोई नहीं है। तब कहा जिसका कोई नहीं है उसका रखवाला वो है। जिसके साथ बहुत लोग हैं, अंत में कौन आएगा, दर्द कौन लेगा? तब बाबा ने कहा मैं दिल का दर्द लेने वाला हूं, अपने अनन्य बच्चों को सहयोग देने के लिए आया हूं, मैं मदद करने आया हूं। और किसको मिलेंगी? जिसका दिल माना मन बुद्धि स्वच्छ है, स्वच्छ ही आकर्षित करता है। इसी को ब्रह्मा कुमार इसके अंदर कहा पवित्रता कहा। मैंने शादी नहीं कहा, ये पवित्रता नहीं, ये ब्रह्मचर्य है। फिजिकल एंड मेंटल क्लीननेस इज प्यूरिटी का, प्रजा के लिए, राजा के लिए भी नहीं। शरीर स्वच्छ, मन स्वच्छ, किसी को देखते ही स्वच्छ मन आता है, ये प्रजा के लिए पवित्रता है। और रॉयल फैमिली में जाना चाहते हो, राज परिवार में जाना चाहते हो, इच्छा अपवित्रता है। इच्छा भी चार प्रकार की है, वस्तु व्यक्ति वैभव मान शान मेरा मान होना चाहिए, ये मुझे चाहिए, इच्छा है, ये अपवित्रता है। फिर राजा के लिए कहा, साधारण विचार साधारण कर्म अपवित्रता है। आज भी देखते हो बड़े बड़े प्रेसिडेंट को भी लिख देते हैं, वो अपने आप जो चाहे बोल नहीं सकते हैं, जो लिखा वही मर्यादित। तो यहां भी हर सोच हर बोल हर कर्म पवित्रता है, पूजनीय बनाता है, वरदान है। एक एक बोल बाबा के तब वरदान होगा, किसका होगा, जिसके बुद्धि में वो ज्ञान और योग की शक्ति है, बाप के स्वरूप खजाने हैं। तब बाबा ने कहा, जो बाप के खजाने हैं वो बच्चों के खजाने हैं, बच्चों को उस पर अधिकार है। तब कहते हैं, मेरा बाबा कहते हैं हम, जो बाप की अमानत है वो मेरी है। तब मेरा अपने आप नहीं होता है, उसको अपनाना पड़ता है। तब बाबा ने कहा अंत में कि बच्चे ज्ञान को यूज करो, स्वरूप बनो, स्व का रूप बनाओ। मुझे क्रोध मुक्त बनना है, मुझे गलत चीज देखना है। मोबाइल के अंदर आज बहुत कुछ आता है, ये मोबाइल हमको सत्युग में नहीं ले जाएगा, ये कहां ले जाएगा। हां, इसका मतलब मोबाइल का त्याग करो ऐसा नहीं। हमने देखा एक जगह पर लंदन में बहुत साल पहले, एक बहन हमारे साथ सवेरे से शाम तक थी। मैंने कहा लंदन में अभी तक मोबाइल आया नहीं है, ऐसा लगा ये 2009 में, तो मुझे अभी तक आया नहीं होगा। सारा दिन में देखा उसके पर मोबाइल बजा नहीं, किसी का फोन नहीं आया। लेकिन 4 बजे जब हम वापस आ रहे थे तो एक कोई दूसरे था वो आए नहीं, उनको बुलाने के लिए उन्होंने फोन निकाला और फोन किया। तब अरे इनके पास फोन था, एक भी रिंग नहीं आया, एक दफा भी उसने मोबाइल बाहर निकाला नहीं। आज हमारे साथ हर सेकंड फोन होगा, हर सेकंड हाथ में मोबाइल होगा। साइंस ने जो साधन दिया है वो यूज करो समय पर। किसी का फोन आया तो उठाओ जरूर, फोन करना है तो जरूर उठाओ, खाली मिल गया तो देखते रहो तो बुद्धि में ज्ञान कैसे चलेगा। हां, ये दुनिया वालों का लक्ष्य है, वो करने दो, हम कौन। हम शुभ बाबा के बच्चे, वारिस बच्चे हैं, हमें क्या करना चाहिए। हां, वो करता है, उसका लक्ष्य अलग है। देखो स्कूल में जिसको फर्स्ट क्लास आना है वो आगे आगे बैठता है और पूरा देखता बैठता है, इधर उधर नहीं देखता है, पूरा ध्यान लगता है, लिखता भी है, तब डिस्टिंक्शन लेता है, नंबर वन अपने आप नहीं बनता है। तब बाबा ने कहा, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे राजा। तो एक शॉर्ट में एक पॉइंट रोज लिखना शुरू करो, भक्ति के संस्कार यहां छोड़ के जाओ, लेके नहीं जाना, नहीं मुझे याद रहेगा। एक दिन कोशिश करो, सुन करके बाहर गेट के बाहर जाते ही पूछ लो कि बाबा ने क्या कहा, अपने आप से पूछ लो, अपनी परीक्षा ले लो, याद है नहीं तो लिखना चाहिए। किसी ने कहने से नहीं मानो, अपने दिल से। तो उसको बाबा ने कहा रियलाइज, तो महसूस करेंगे। अभी हमने सुना, एक घंटा बैठ के सुना, तब लगा बहुत अच्छा है बाबा के। बाहर जाते अपने आप से पूछो, क्या कहा बाबा ने आज, क्या करना चाहिए, एक भी शब्द पूरा नहीं आ रहा है, तब ये रियलाइज, ये महसूस करते हो। नहीं, सुनने से याद नहीं रहता है, मुझे लिखना चाहिए, तब परिवर्तन करते हो, नहीं तो ये आदत आती नहीं है। नहीं, हमने अभी सुनते सुनते लगता आपको हम सब याद है, बहुत अच्छा लगा, बहुत याद रहेगा, ये वातावरण का प्रभाव है। उस वातावरण में जाते ही सब सोडा वाटर। इसलिए एक ही काम करो, दो भी नहीं चाहिए, एक ही काम करो, एक साधे तो सब साधे। वो क्या, रोज अगर बाबा के बच्चे समझते हो, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ते हो, ब्रह्मा कुमार समझते हो, ब्रह्मा कुमारी समझते हो, सत्युग का वर्षा चाहिए, सत्युग में जाना चाहते हो, नहीं जाना चाहते तो चलेगा, बाबा ने कहा आज उधर सभी प्रकार के चाहिए, हाँ, कैसे कैसे साधारण पद भी चलेगा। अगर कुछ चाहते हो तो कुछ करने के बिगर नहीं मिलता है, कुछ करना है। क्योंकि इस ब्रह्मांड के अंदर ऐसी व्यवस्था है कि एक बीज धरती में डालो, ये धरती आज भी 10, 20, 25 दाना देती है। अगर एक बीज नहीं डालो, भगवान उगाएगा, उगाएगा, भोला नाथ है, सब कुछ कर देगा। मेरे पास बीज नहीं है, उगेगा। विधान है, एक बीज बोलो, हिम्मत का एक कदम रखो। इसलिए हिम्मत, अभी आए हो बाबा के टर में, यूपी वाले मना कौन कौन हो, बाबा कहता है जहां क्या है, सब जगह मंदिर है, तीर्थ स्थान सारे यूपी में है ना। तो ऐसे पुण्य आत्मा हो, देव आत्मा हो, एक काम करके जाओ, लक्ष्य लेके मुझे रोज एक मुरली के पॉइंट लिख के रखना है और सवेरे से शाम तक 2-3 दफा पढ़ाना है, 2-3 दफा औरों को सुनाना, ये लक्ष्य लेके जाओ। ठीक है, अभी उसको स्टैंप लगाना पड़ेगा ना, लक्ष्य रखा, संकल्प किया, दृढ़ कब होगा वो, तो शक्ति भरने पड़ेंगे। अभी आधा घंटा एक घंटा योग भी करना है, तो बीज बोया उसको पानी भी देना पड़ेगा ना, बीज बोने से अपने आप तो नहीं होगा। तो अभी हिलना नहीं, इधर उधर जाना नहीं, आराम से शांत होके बैठो। और ब्रह्मा कुमार इसके अंदर एक ही राजयोग है, दोनों, अपने को आत्मा समझ, परम पिता शिव परमात्मा को याद करो, तब विकर्म विनाश होते हैं, जो पुरानी आदत मिटेंगी। अपने को जागृत करो, तो हर सेकंड मैं माना शरीर की याद है, तो आत्म अभिमानी बनना है। बैठते ही पूछ लो, अपने मन बुद्धि दो हाथ जोड़ते तब नमस्ते होता है, एक हाथ से नहीं, पूछ लो मैं कौन, बुद्धि जवाब देती है। ये मन बुद्धि को ज्ञान का प्रयोग योग है यहां। और शिव बाबा सर्वशक्तिवान है, पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, एक एक शक्ति के ऊपर मंथन करो, बात करो, इतना ही है। ऐसे बैठ सकते हो एक घंटा के आधा घंटा, हाँ, एक आता जाता है तो दूसरों को डिस्टर्ब होता है ना, थोड़े कुछ अपने आप को प्रकृति जीत कहा है ना, ये करो। ओम शांति।